हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरा यकीन मानिए तारा, मैं आपको सपने में भी किसी भी तरह की खरोच तक देने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं आपको इतनी सी तकलीफ भी नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। अब तारा को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि वहां रह रहा काली शक्तियों का मालिक अमित धीरे धीरे अपने दानव को अमन के ऊपर हावी करना शुरू कर चुका था। अमन के ऊपर हावी करना शुरू कर दिया था और जल्द ही वो पूरी तरह से उसे अपने पूरे जिस्म में प्रवेश कर लेगा। उसके बाद वो अपनी पूरी मनमानी करेगा। उसने सोच लिया था कि जिस तरह से तारा ने उसे चांटा मारा था उसका बदला लेगा, और जब उसका दानव जो उसने अपने जिस्म से बनाया था अमन के अंदर प्रवेश कर जाएगा, वो उसे मालिका के साथ मिलाकर खुद तारा के साथ रिश्ता बनाएगा, तारा के थप्पड़ का जवाब देगा। कहीं ना कहीं काली शक्ति का मालिक अमित बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे ये भी पता था कि उसका महागुरु उसे कितना ज्यादा पसंद करता है और उसे प्यार करता है। अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो ना तो उसे कभी उसकी शक्ति लौटाता और ना ही उसके लिए खड़ा होता। तो अब कहीं ना कहीं काली शक्ति के मालिक अमित के मन में कुछ अलग ही तरह के विचार जन्म ले रहे थे। वहीं तारा परी अमन की इस तरह की बातें सुनकर काफी हद तक हैरान थी, क्योंकि अमन एक पल में कुछ और एक पल में कुछ और हो रहा था। धीरे धीरे अमन का बर्ताव तारा के प्रति बदलने लगा था। हर वक्त तारा को ऐसा लगने लगा था मानो अमन सिर्फ और सिर्फ तारा के जिस्म को देख रहा हो, और अमन के मन में जो तारा को लेकर मोहब्बत थी वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अब तारा काफी ज्यादा हैरान थी और वो सोचने लगी थी कि उसे शायद अमन के साथ इतना ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए था। और अगर वो उससे प्यार करता है, ये बात तारा अच्छी तरह से जानती थी। तारा भी तो अमन से प्यार करती है, तो इस तरह से उसे अपने प्यार पर यकीन रखना चाहिए और अमन को समझने की प्यार से कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं तारा के दिल दिमाग में ये आइडिया आ चुका था। तो इसीलिए जैसे ही उसने अमन को अपने सामने खड़े हुए देखा, उसने तुरंत आगे बढ़कर अमन को गले से लगा लिया और उसके गालों को छूते हुए कहने लगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कुछ भी ऐसा घटिया हरकत करें जो मुझे नागवार लगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उसने उसे सीने से लगा रखा था, लेकिन अचानक अमन के होंठ एक बार फिर तारा को करीब पाकर उसके जिस्म पर चलने लगे। तारा काफी हद तक अमन के इस तरह के व्यवहार को लेकर हैरान थी, क्योंकि भले ही वो पहले भी अमन के साथ इंटीमेट हुआ करती थी और खुश भी हुआ करती थी अमन के साथ इंटीमेट होने में, लेकिन अब अमन कुछ ज्यादा ही इंटीमेट हो रहा था। और माफी मांगने के बाद एकदम से उसके होंठ जैसे ही तारा के जिस्म पर चलने लगे, तारा को एहसास हो गया कि अमन एक बार फिर उसके जिस्म को चाहता है। तो इसीलिए तारा ने उस वक्त उसकी बात मान ली थी और उसने उसकी मनमर्जी से अपने जिस्म पर चलने दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब तारा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है जिसके बारे में उसे दूर दूर तक कोई एहसास नहीं है। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित उससे अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि आज उसे एक तो काली शक्तियों के महागुरु के आगे सर झुकना पड़ा था और उसे शर्मिंदा होना पड़ा था, लेकिन अब उसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी थी, क्योंकि काली शक्तियों के महागुरु ने इस बार उसे अपने जिस्म की शक्तियां दी थी जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। मालिका सर झुकाकर अमित के सामने खड़ी हुई थी और अमित गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर अकेले कैसे आ सकती हो? तभी मालिका तुरंत अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए बोली, लेकिन मालिक मैं क्या करती, आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरा यहां होना बहुत ही जरूरी था, और धरा को भी तो वश में करना था। बीच बीच में धरा को अपने काबू में करने के लिए मुझे उसके करीब आना ही था, इसीलिए कहीं आपका प्लान खराब हो जाए तो मैं यहां आ गई थी। तभी अमित उसके जवाब से संतुष्ट हो गया और कहने लगा, चलो चलो ठीक है, अब तुम जाओ और देखो धरा क्या कर रही है। उसे कुछ ऐसा बोलो कि वो मेरे कमरे में आने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जैसे ही मालिका ने यह सुना वो हैरान हो गई। वो समझ चुकी थी कि अमित की नजर अब धरा पर है, क्योंकि धरा एक इंसान थी लेकिन खूबसूरत थी, इसीलिए वो उसके साथ सोने का प्लानिंग कर रहा था। और जैसे ही वो उसके हुक्म के मुताबिक धरा के कमरे में गई तो धरा उस वक्त सोई हुई थी, और जैसे ही मालिका उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश की, अचानक से धरा उठ बैठी और अपने सामने मालिका को देखकर कहने लगी, कौन है आप और इस तरह से यहां क्या कर रही है और मैं कहां हूं? जैसे ही धरा ने अचानक से ये बोला, मालिका को एहसास हो गया कि अब धरा उसके वश से बाहर निकल चुकी है। क्योंकि हर 4 घंटे में उसे धरा को अपने वश में करना था, वो भी उसके शरीर में अपने नाखून को चुभोकर, जिससे उसके नाखून का जहर उसके अंदर चला जाता और वो पूरी तरह से उसके वश में हो जाती थी। लेकिन अब 4 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि हल्दी के फंक्शन के बाद धरा सीधा अपने कमरे में आकर सो गई थी। उसे सोए हुए काफी टाइम हो गया था, तो जिसकी वजह से वो उसके वश से बाहर निकल चुकी थी। अब जैसे ही उसने मालिका को इस तरह से सवाल किया, मालिका उसकी ओर देखकर कहने लगी, ओ धरा, लगता है तुम्हें फिर होश आ गया। फिर से तुम्हें अपने वश में करना होगा, और इस बार ऐसा कुछ करती हूँ कि तुम एक पल के लिए भी मेरे वश से बाहर नहीं आ पाओगी। ऐसा कहकर मालिका ने अपनी उंगली का नाखून बड़ा तेज और पहना और एकदम से लंबा कर लिया था। और जैसे ही उसने धरा की बाजू में वो बड़ा नाखून हल्का सा चुभाया, अचानक से वहां पर सोनल परी आ गई। क्योंकि सोनल परी ने मालिका को धरा के कमरे में उस वक्त जाते हुए देख लिया था, तो वो काफी ज्यादा हैरान थी। वो जानना चाहती थी कि आखिरकार मालिका इस वक्त धरा के कमरे में क्या कर रही है। और कहीं ना कहीं सोनल परी मालिका की सारी बातें भी सुन चुकी थी और ये भी देख चुकी थी कि किस तरह से मालिका अपने काले जादू के नाखून का इस्तेमाल करते हुए धरा को अपने वश में करने वाली थी। लेकिन सोनल परी के आ जाने पर अब उसका पूरा का पूरा प्लान खराब हो चुका था। लेकिन तभी धरा तुरंत खड़ी होकर सोनल परी के पास चली गई और कहने लगी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग, और ये कौन है, और ये वश में करना क्या होता है? किसे वश में करने की बात कर रही है? तभी सोनल परी ने भी इंसानों वाली एक्टिंग कर दी और वो कहने लगी, अरे क्या हुआ मैडम, आप इतना परेशान क्यों हैं? लगता है कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया है। आप जाइए, जाकर आराम कर लीजिए। वैसे भी आज आपका हल्दी का फंक्शन था, जिसकी वजह से शायद आप थक गई हैं। सोनल बातों ही बातों में धरा से सच जानना चाहती थी कि आखिरकार वो यहाँ आई कैसे। लेकिन तभी धरा ने रोते रोते कहना शुरू कर दिया, हल्दी का फंक्शन? अरे किसकी हल्दी का फंक्शन? मेरा कोई हल्दी का फंक्शन नहीं हुआ है, और मैं तो आखिरी बार अपने पिता की चिता को आज दे रही थी, और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं है कि मुझे क्या हुआ है।
ऐसा कहकर धरा अपने पिताजी को याद करके बुरी तरह से रोने लगी। वहीं मलिका अब अपने नाखून चबाने लगी थी। उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, कैसे वो धरा को अपने वश में करे। अगर इस तरह से सोनल परी के सामने धरा रोती रही तो उसका भेद खुल सकता था, तो ये उनके लिए किसी भी हद तक ठीक नहीं था। वहीं सोनल परी ने जैसे ही सोनल परी की इस तरह की बातें सुनी, अचानक से उसके मन में आशंकाएं भर उठीं, और वो समझ चुकी थी कि इस वक्त धरा किसी के भी वश में नहीं है। और ये अच्छा मौका था धरा से सारा सच उगलवाने का कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। वैसे भी तारा कब से ये जानना चाहती थी, इसीलिए जल्दी से सोनल परी ने मलिका की नज़रों से बचते बचते धरा पर अपने एक जादुई शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद धरा एक बार फिर नींद में सोने लगी। तभी धरा को इस तरह से सोता हुआ देखकर सोनल परी ने मलिका को देखकर कहा, मुझे लगता है कि आज मैडम हल्दी के फंक्शन अटेंड करने के बाद कुछ ज्यादा ही थक गई हैं, इसीलिए शायद नींद में बड़बड़ाने लगी थीं, और शायद इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही थीं। ऐसा होता है अक्सर, जब लड़कियों की शादी होती है तो कुछ ना कुछ करने लग जाती हैं, तो ये नॉर्मल है। ऐसा कहकर सोनल परी ने धरा को वहीं बेड पर लेटा दिया, और तभी मलिका मन ही मन में इस बात का शुक्र मनाने लगी कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ था। और अगर अभी धरा सो ही गई है तो बेसिकली अभी सुबह से पहले नहीं उठने वाली थी। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए मलिका ने एक नज़र सोनल परी की ओर देखकर वहां से जाने लगी और कहने लगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर सोनल परी को भी वहां से जाने के लिए कह चुकी थी। लेकिन सोनल परी तो उस वक्त धरा से उसके हाल पूछना चाहती थी, तो इसीलिए उसने मन ही मन में तारा परी को बुलाने का फैसला कर लिया। तारा परी, जो कि अमन के साथ उस वक्त इंटीमेट हो रही थी, उसके बाद अमन थककर सो चुका था, लेकिन तारा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अमन कभी कुछ और होता था, कभी कुछ और। हर पल में अमन का बर्ताव बदल रहा था, जिसे तारा परी थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि सोनल परी उससे बात करना चाहती है, तो जल्दी ही तारा परी जल्दी से अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए कपड़े पहनकर तुरंत सोनल परी के कमरे में मौजूद थी, जहां धरा भी थी। वैसे भी तारा परी ने सोनल परी और धरा को अपने बराबर वाला ही कमरा दिया था। जैसे ही तारा परी वहां आई, सोनल परी उसकी ओर देखकर कहने लगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि धरा इस वक्त मलिका के चंगुल में नहीं है, और ये सच निकलवाने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। तो तुम काम करो, मैंने धरा पर सोने वाली शक्ति का प्रयोग किया है, तो वो जादू को खत्म करो। तब तक मैं मलिका और साथ ही साथ काली शक्तियों के मालिक अमित के कमरे को नजरबंद करके आती हूँ, जिससे कि वो इस कमरे की ओर ना आ सके और न ही इस कमरे में क्या बातें हो रही हैं इसके बारे में कुछ सुन सके। सोनल परी की बात सुनकर तारा ने हाँ में अपनी सहमति दे दी थी, और जल्दी ही सोनल परी ने मलिका के कमरे और साथ साथ अमित के कमरे के बाहर अपने जादू का प्रयोग करते हुए घेरा बना दिया था, जिससे अब उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने वाला था, और खुद वो तारा के साथ धरा के साथ मौजूद थी। तारा ने तब तक सोनल परी का जादू धरा के ऊपर से खत्म कर दिया था, और जैसे ही धरा ने तारा परी को देखा तो अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि तारा परी ने लास्ट टाइम जब धरा से मिली थी उसने उसकी याददाश्त नहीं मिटाई थी, तो जिसकी बदौलत तारा का चेहरा धरा को अच्छी तरह से याद था, और आज फिर धरा को अपने सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई, उसके गले लगकर जोर से रोने लगी। तब तारा उसे समझाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, आखिरकार क्या हुआ है, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ कैसे आई हो और क्यों कैसे तुम उस अमित के चंगुल में फंस गई हो। तभी धरा अपने चेहरे पर कितने ही सारे भाव लाकर बोली, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ। आपने जब मुझे उस नेता के बेटे से बचाया था, उसके बाद मैंने उसे उसके बेटे को अच्छी खासी सबक सिखाया था, और उसके बाद मैं अपने पिता के साथ वो शहर छोड़कर गांव चली गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पिताजी बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगे थे, तो इसके लिए मुझे वापस से शहर में आना पड़ा था, और मैं पिताजी का इलाज यहीं के एक सिटी हॉस्पिटल में करवा रही थी। फिर एक दिन लंबी बीमारी के चलते पिताजी का देहांत हो गया, और जब मैं अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद घर लौट रही थी, तब मैं किसी से टकराई थी, और उसके बाद से मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। जैसे ही धरा ने अपनी आपबीती सुनाई, तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और अचानक से तारा परी ने धरा का हाथ पकड़ लिया। कहीं ना कहीं तारा को यह जानना था कि आखिरकार धरा को वश में किसने किया था, और जैसे ही उसने उसकी आंखों में झांकना शुरू किया तो जल्दी ही उसे धरा दिखाई दे गई थी, जो कि अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद घर लौट रही थी। क्या दो परी और एक इंसान मिलकर अमित का सच सबको दिखा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।